ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो ना? सभी शांति प्रिय आत्माएं हो और प्रभु प्रिय भी हो। यू लव पीस एंड यू लव गॉड, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है। जो शांति प्रिय होगा वो प्रभु प्रिय भी जरूर होगा, और जो प्रभु प्रिय है वो शांति प्रिय भी जरूर होगा। तो ये तो हम सब जानते हैं, और वो आध्यात्मिक भी जरूर होगा। तो आध्यात्मिकता की क्या डेफिनेशन है, कल किसी ने पूछा। आध्यात्मिकता शब्द में ही उसकी डेफिनेशन है। आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन, सिंपल टर्म्स में आत्मा का अध्ययन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, आत्मा। और उस आत्मा के अध्ययन में बहुत कुछ अध्ययन आ जाता है। आत्मा किसकी संतान? परमात्मा की। तो परमात्मा का भी उसमें अध्ययन है, ईश्वर कौन है। फिर आत्मा कहाँ से आई है? तो घर की पहचान, जो आत्माओं का धाम है। फिर आत्मा इस संसार में क्यों आई? ये सब आध्यात्मिक प्रश्न है। हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करने आए, कब जाना है, कहाँ जाना है, जिसके लिए एक बहुत सुंदर गीत है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। आत्मा इस संसार में मुसाफिर है, लेकिन मंजिल कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, जहाँ से आई है वहीं वापस जाना है। तो कहाँ से आई है? तो घर का पता। फिर क्यों आई यहाँ? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए कई कहते हैं कि आखिर भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? इस सब की क्या आवश्यकता थी? तो पहले तो कल आपको बताया, भगवान ने दुनिया बनाई नहीं है। ये बनाई नहीं है, बनाई होगी, होती तो फिर एक दिन नष्ट भी हो जाएगी। जो चीज बनती है ना, वो फिर नष्ट भी होती है, क्योंकि परिवर्तन होते होते वो नष्ट भी हो जाएगी बात चीज। तो जो चीज बनाई ही नहीं है तो नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं, और क्यों बनाए ये भी प्रश्न नहीं। लेकिन फिर भी कई पूछते हैं, क्यों आखिर हम इस संसार में आए? अगर हम सब परम धाम में थे, उस शांति धाम, मुक्ति धाम में थे, आत्माएं परमात्मा के पास थी, तो यहाँ आए क्यों? क्यों भगवान ने भेजा? फिर ये भी साथ जोड़ते हैं, भगवान ने हमको इस धरती पर क्यों भेजा? तो तीन कारणों से भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। हम कोई बिना लक्ष्य के नहीं आए इस संसार में। कई बार हम पूछते हैं लोगों से, आप यहाँ इस संसार में क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों जन्म है? तो बड़े विचित्र जवाब मिलते हैं। किसी ने तो कह दिया, बस खाओ पियो मौज करने आए, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, इसलिए इस संसार में आए हैं। फिर किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बस संग्रह करो, परिग्रह, जितना जमा कर सको उतना जमा करो, इसीलिए तो है ये संसार। लेकिन वास्तव में हम इसलिए नहीं आए। तो क्या लक्ष्य लेकर के हम इस संसार में आए? पहला लक्ष्य था कि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं। मन बुद्धि संस्कार की बात जब करते हैं तो आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं, वो कर्म करती, जैसे कोई कलाकार होता है उसके अंदर वो कला होती है और वो अवश्य ये चाहेगा कि ये कला मैं प्रदर्शित करूं, दिखाऊं। एक नृत्य करने वाला होगा, गायक होगा, संगीतकार होगा, उसके अंदर ये कला है, कला, और उस कला को प्रदर्शित करना चाहता है जरूर, लेकिन उस कला को प्रदर्शित करने के लिए उसको कुछ न कुछ साधन चाहिए। आप सर्जन हैं और सर्जरी करते हैं, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। मान लीजिए सर्जन तो बन गए, लेकिन सर्जरी के लिए ये सब साधन तो चाहिए ना। तो बिना साधन के आप वो साधना या प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे? तो साधक जरूर है, लेकिन साधन भी चाहिए। तो आत्मा के अंदर कर्म करने की कला है, पर उसके लिए शरीर चाहिए। एक बहुत अच्छी सीडी हो आपके पास, बहुत सुंदर म्यूजिक, वेरी लवली, वेरी स्वीट, लेकिन आपके पास वो सीडी प्लेयर ही नहीं है, मान लो। तो इसीलिए सीडी प्लेयर भी जरूरी है और वो सीडी भी जरूरी है, तभी तो आप वो गीत सुन सकेंगे, म्यूजिक सुन सकेंगे। तो ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर आत्मा के अंदर जो कर्म करने की कला है वो आकर के प्रदर्शित करती है, और उसके लिए शरीर चाहिए। आत्मा आत्मा की बात करते हैं तो कई कहते हैं आप लोग आत्मा को महत्व देते हो, शरीर को क्यों नहीं महत्व देते हो? हम कहते हैं क्यों नहीं देते, उसको भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए बॉडी माइंड दोनों की मेडिसिन चाहिए, केवल बॉडी की नहीं, केवल माइंड की भी नहीं, दोनों की चाहिए। बोथ गो टुगेदर, दोनों का आपस में गहरा संबंध है। तो बॉडी एंड सोल दोनों का जो संबंध है उसको, उसके लिए बॉडी भी चाहिए और सोल भी चाहिए। सोल के बिना बॉडी भी किस काम की, और बॉडी के बिना भी सोल किस काम की है? उसको साधन चाहिए। तो महत्व दोनों का है, लेकिन दोनों के बीच में, बीच से मैं कौन? फिर वही प्रश्न आता है, मैं कौन? तो वो मैं आत्मा। अब ये संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ हम आत्माएं इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। तो फिर कई कहते हैं कि अच्छा कर्म तो करती, लेकिन क्या कर्म करना, ये भी तो लक्ष्य हो। कर्म इज नॉट जस्ट कर्म, इट हैज अ डीप मीनिंग। सो व्हाट इज कर्मा? अंडरस्टैंडिंग कर्मा फिलोसॉफी इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट। इसलिए क्या कर्म करना है, तो फिर दूसरा लक्ष्य मिल जाता है आत्मा को कि इस संसार में क्या कर्म करना है। और वो है कि आत्मा के अंदर जो मूलभूत गुण है, जो आपको बता रहे थे कल डॉक्टर सतीश गुप्ता भी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 कोर वैल्यूज है। जैसे 7 कलर्स हैं, दे आर द बेसिक कलर्स। इसलिए विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये बेसिक कलर्स है। फिर उनको मिला करके हम कितने कलर्स तैयार कर सकते हैं, अलग अलग वेराइटी। 7 दिन है तो 7 दिन का जीवन है, 7 सुर है, सारे ग म प द नि वस, उसके आधार पर सारा म्यूजिक वर्ल्ड है। तो 7 का बड़ा महत्व है। तो ये कोर वैल्यूज है आत्मा के अंदर, और उसके आधार पर संसार के सारे वैल्यूज है, चाहे वो फैमिली वैल्यूज हो, प्रोफेशनल वैल्यूज हो, चाहे किसी भी प्रकार के वैल्यूज हो, फैमिली वैल्यूज हो, रिलेशनशिप के में वैल्यूज हो, वो वैल्यूज की हम बातें करते हैं, लेकिन उनके कोर वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज, इननेट वैल्यूज जिसको कहते हैं, वो आत्मा के ये 7 मूल गुण हैं। तो आत्मा क्यों आई? कर्म करने तो आई, लेकिन कौन से कर्म? वे कर्म जिनमें ये 7 गुण व्यक्त हो, क्योंकि कर्म से ही व्यक्त होंगे वो गुण। इसलिए कहते हैं आपके अंदर है, ज्ञान अंदर से आता है, विजडम जिसको कल कहा, क्योंकि ज्ञान को लोगों ने केवल इन्फॉर्मेशन का रूप दे दिया है, लेकिन ज्ञान तो वो भी भीतर से आता है। इसलिए भगवान से हम ज्ञान मांगते हैं, असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वो ज्ञान दो जिससे अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश मिले। तो इसीलिए ये सात गुण आत्मा के अंदर निहित है, दे आर इंटरनल एंड इटर्नल क्वालिटीज ऑफ द सोल, दैट्स योर वेरी नेचर। जैसे पानी की नेचर है शीतलता, आप उसको गर्म कीजिए लेकिन वो फिर धीरे धीरे फिर ठंडा हो जाएगा। आप अग्नि, अग्नि का गुण ही है सेक देना, हीट लाइट, अगर उसमें हीट लाइट ही ना हो तो अग्नि कहेगी। इसलिए जैसे प्रकृति के तत्वों का अपना अपना गुण होता है उसको नेचर कहते हैं, इसी प्रकार आत्मा की भी नेचर है ये, इस नेचुरल गुण। और नेचर शब्द को अगर हम कहीं धर्म, आत्मा का धर्म है, धर्म किसको कहा जाता है जो धारण करने योग्य हो। तो ये सात मूल गुण आत्मा के हैं और इसलिए शरीर में आए, इसलिए संसार में आए, इसलिए इस कर्म क्षेत्र पर आए ताकि वो कर्म हम व्यक्त कर सके शरीर के द्वारा। तो हर कर्म में ये गुण दिखाई दे जो अंतरात्मा के हैं। और तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य, बहुत ऊंचा लक्ष्य, कि हम इस संसार में आए हैं परमात्मा का नाम रोशन करने के लिए। क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि ईश्वर ने भेजा, बच्चा पैदा होता है भगवान ने दिया, तो भगवान ने क्यों दिया आपको, किस लिए भेजा इस संसार में, तो इसलिए ताकि उसका नाम रोशन हो। आज कोई भी बड़ी कंपनी होती है, कोई भी बड़े प्रोफेशन में है तो उनकी कंपनी उनको विदेश भेजती है, लर्न मोर अंडरस्टैंड मोर, ताकि हमारी कंपनी में और बढ़ोतरी हो और इम्प्रूवमेंट हो। तो अगर वो वहाँ जाए, विदेश जाए, कंपनी पैसा खर्च करती है, टिकट देती है, सब कुछ करती है और उसको लक्ष्य देती है कि यू हैव टू डू लर्न समथिंग मोर सो दैट यू कैन इम्प्रूव हियर, परंतु वो वहां जाकर के सोचे बस यहाँ तो खाना पीना मौज करना है, विदेश में ना घूमना फिरना बस और कुछ नहीं, और सारा पैसा खर्च करके वापस आए, क्या यही लक्ष्य था? कंपनी के प्रति उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऑथेंटिसिटी है ना, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन दैट ओनली, वही उसकी सत्यता है। इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कि तुम आए हो ईश्वर का नाम रोशन करने, आपके कर्मों से परमात्मा का नाम रोशन हो। जैसे कोई हर पिता चाहेगा कि मेरा बेटा हाँ बड़ा लायक बने, और उसके लिए क्या नहीं वो बच्चे के लिए करता है कि ये लायक बने, और अंदर में ये भी महत्वाकांक्षा को या इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। ये किसका बच्चा है, किसका बेटा? तो बेटा इतना ऊंचा है तो बाप कैसा होगा, सोच सकते हैं। तो परमात्मा का नाम रोशन कर दिया है, हालांकि ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते जाओ मेरा नाम रोशन करके आओ, लेकिन ये बच्चे का फर्ज बनता है कि पिता का नाम मुझे रोशन करना है, कोई ऐसा कर्म मैं न करूं जो मेरे पिता का नाम बदनाम हो। क्योंकि बच्चे ने किया तो पिता का भी नाम बदनाम होता है, केवल बच्चे का ही नहीं होता है, कुछ गलत किया तो। इसलिए ये लक्ष्य लेकर के हम इस संसार में आए। अब कर्म कौन से करने हैं, तो पहले तो इस कर्म शब्द को हमें समझना होगा, व्हाट इज कर्म। सो अंडरस्टैंडिंग कर्म फिलोसॉफी, कर्म शब्द कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स सम वर्क और एक्शन और डीड। कोई भी क्रिया, हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एनीथिंग दैट यू डू, देखना सुनना बोलना हंसना रोना सोना बैठना, ये सब कर्म है, क्रियाएं हैं, वर्ब्स है। और कोई भी वर्ब एक कर्म है, एक क्रिया है, लेकिन इट इज नॉट दैट सिंपल टू अंडरस्टैंड कर्म। क्योंकि जब कर्म शब्द कहते हैं इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट, कर्म मीन्स एन एक्शन दैट हैज कॉन्सिक्वेंसेस टू, क्योंकि कर्म अकेला नहीं होता है, कर्म के साथ उसका उसकी कर्म की प्रतिक्रिया भी है, एक्शन। action and reaction, they go together. You cannot just say action. The reaction is there in a hidden way. इसीलिए कर्म को समझना माना उस एक्शन को और रिएक्शन को दोनों को समझना, एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो दोनों को समझना माना कर्म को समझना. अब इतने हद तक हमें कर्म को समझना होगा. सो व्हाट डज कर्मा थियरी, व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? इट इज बेस्ड ऑन, इफ somebody denies this, then he is denying science too. क्योंकि विज्ञान में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेरी क्लियर, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. बट नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल थियरी टू अंडरस्टैंड कि एक्शन का रिएक्शन अपोजिट है. बट स्टिल अगेन कर्मा फिलोसॉफी इज नॉट दैट सिंपल कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है. इट इज मच डीपर देन दैट. क्यों? क्योंकि एक्शन भी जब भी हम करते, इट्स नॉट जस्ट एक्शन विच मैटर्स, लेकिन वो एक्शन हमने कहाँ किया, कब किया, किस परिस्थिति में किया, किसके साथ किया, ये सारी बातें भी उसके साथ जुड़ जाती है. ये सब बातें देखी जाती है. इट्स नॉट जस्ट एक्शन. मान लीजिए कोई कहे कि हत्या करना पाप है. डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग सिन. आई हैव नो राइट टू किल एनीवन. इवन अ मदर डजंट हैव अ राइट टू किल हर चाइल्ड. कोई माँ कहे मैंने ही तो पैदा किया है, अगर मैं अपने बच्चे को मार डालूं तो क्या हुआ, मैंने ही तो पैदा किया है. लेकिन नहीं, वो हत्यारिन कहलाई जाएगी. शी विल बी कॉल्ड द मर्डरर इवन इफ शी किल्स हर ओन चाइल्ड. सो तो हम देखें कि कर्म तो किया परंतु किसी की हत्या की मान लो, परंतु वही कर्म एक बॉर्डर पर सिपाही, हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, और मान लीजिए उनको बंदूक दी गई है फॉर डिफेंस. अब अगर वो कहे कि हत्या करना पाप है, मान लो वहां पर ये चलेगा? चलेगा? वहां तो भारत के 120 करोड़ भारतवासियों की के जीवन का सवाल है. वो ये प्रश्न नहीं कर सकता है. एक आतंकवादी सामने आया, नहीं नहीं ये हत्या करना पाप है, नहीं, दैट टाइम ही हैज टू डू हिज ड्यूटी. और जब वो ड्यूटी निभाता है, मान लीजिए कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया, तो उसको तो वीर चक्र, परम वीर चक्र, अभी 26 तारीख आज 25 है ना जनवरी, 26 जनवरी कल आ रही है. तो देखिए क्या नहीं उनको, क्या नहीं उनका मान दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इनको वीर चक्र, परम वीर चक्र दिए जाते हैं कि उन्होंने क्या वीरता दिखाई. लेकिन कर्म कौन सा कि हत्या करने का है ना, मारा ही ना वो व्यक्ति तो, को तो मारा पर वो आतंकवादी था. इसीलिए कर्म तो वही है कि गोली चलाई, लेकिन उसको तो अवार्ड्स मिले, और ऐसे किसी को मारा तो उसको फांसी मिली. अभी क्या अंतर है? कर्म तो वही है, लेकिन स्थान, समय, परिस्थिति, ये सारी बातें उनके साथ संलग्न हो जाती है. मान लीजिए कोई कहे झूठ बोलना पाप है, बहुत बड़ी बात है ये, झूठ बोलना तो पाप है. कोई झूठ बोलता है तो हमको गुस्सा आता है, ये झूठ क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहे है, झूठ बोलना पाप है इसलिए गुस्सा आता है. लेकिन कभी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जहां सच बोलना भी पाप बन सकता है. मान लीजिए आपके ही प्रोफेशन में आप कैंसर स्पेशलिस्ट है या जो भी है, और आपको आपने डायग्नोस किया, आपको पता चला कि इसको कैंसर है, क्या आप तुरंत जाके उस पेशेंट को कहेंगे आपको तो कैंसर है? ऐसे बोल देंगे सीधा? है कोई ऐसे डॉक्टर ऐसे कहने वाला? वो आपसे पूछ सकता है, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है? आप कहेंगे अभी देख रहे हैं, आई देख रहे हैं। यू विल नेवर से स्ट्रेट अवे, क्योंकि अगर स्ट्रेट अवे कह दिया वो कैंसर से तो 10 साल के बाद भी मर सकता, उस समय हार्ट अटैक आ गया तो एक सेकंड में मर जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने उसका ऐसा ऐसा खोल दिया आपने राज कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए बड़े धीरज से डॉक्टर कहेगा मैं देख रहा हूँ, अभी आपको बता नहीं सकते हैं, परंतु अपने उनके रिश्तेदारों को कहेगा यू हैव टू गो एंड टेल हिम, डू यू वांट मी टू टेल हिम, पहले उनसे पूछेंगे। कई ऐसे हमने प्रसंग देखे हैं कि डॉक्टर को कितना प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि क्या मैं कहूँ क्या ना कहूँ। तो देखिए वो झूठ नहीं है, क्योंकि उसके कल्याण के प्रति आप सोच रहे हैं। भले झूठ कहेंगे कि अभी देख रहे हैं, आई नो इट्स नॉट ट्रूथ, वो तो झूठ ही है ना, क्योंकि पता चल गया एवरीथिंग इज नॉन, परंतु यू विल नेवर स्पीक द ट्रूथ इन दिस वे। यू विल नॉट इवन हाइड द ट्रूथ, बट यू विल नॉट स्पीक डायरेक्ट ट्रूथ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर यहां सच बोलना पाप हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम निमित्त बन गए। तो देखिए किसको हम अच्छा कहेंगे किसको बुरा कहेंगे, ये भी कई लोग समझ नहीं पाते। इसलिए कर्म फिलॉसफी को समझना बहुत गहरा है, बहुत गहराई है। हम आवाज करते हैं तो ये आवाज आप तक पहुंच रही है, परंतु हम एक खुले मैदान में जोर से आवाज करेंगे वो किसी को भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो तो हवा में उड़ जाएगी आवाज। और वही आवाज अगर हम एक डोम में करते हैं, इनसाइड अ डोम, जहां चारों ओर बंद है गोल है, वह इतनी एकोइंग होगी आवाज की कि जरा सी आवाज इतना 10 गुना 100 गुना मैग्नीफाई होकर के वो आवाज चारों ओर फैलेगी। आवाज उतनी लेकिन रिएक्शन इज सो डिफरेंट, सो मच मोर इंटेंस। और वहां तो खुले मैदान में तो कितना भी जोर से चिल्लाया नो रिएक्शन, पता भी नहीं, भले आवाज तो होगा वो वाइब्रेशंस तो होंगे लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगा। तो कर्म फिलॉसफी इज नॉट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म की गति बड़ी गहन है और साधारण इंसान इस गति को समझ नहीं सकता है। पर डेफिनेटली कर्म मीन्स द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट एंड एवरी इफेक्ट बिकम्स अ कॉज फॉर अनदर इफेक्ट। यू नो सम पीपल से हम लोग वैसे भी कहते हैं कि भाई पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट इट, पास्ट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज डोंट इवन थिंक ऑफ इट। But definitely we have to learn a lesson from the past. Not that we forget it, we have to learn a lesson. Because the present is dependent on the past. Whatever I have done in the past, on the basis of that I am in the present. I would never have been sitting here speaking to all of you if I had not had a very good past, you know, studied this, gone into the depth of it. So ye to nahi hota. Present is based on the past, and therefore it's not that just forget the past, but learn a lesson from the past, because past has brought this present, and present will create your future. Isliye you are the master of your own destiny. What you do now will make your destiny, your future, and therefore all the three aspects of time have a link. Isliye cause and effect, and that effect becomes a cause for another effect. What I am today is because of the past, but what I do today will affect my future, definitely. So it's a cause and effect formula. And also a very beautiful saying, aap jo karte hai wo wapas aapko hi aayega, what goes around comes around, and you get what you give. If you give happiness, you will get happiness. If you give sorrow, you will get sorrow. But again, it's not so simple. इसलिए कई लोग कहते हैं कि मैं तो सबको सुख देता हूँ, लेकिन लोग हमको दुख क्यों देते हैं? कई कहते हैं मेरे अंदर में किसके प्रति भी बुरी भावना नहीं है, पर लोग हमको बहुत दुख देते हैं। अब इसको दो रूप से देखना होता है। दुख आप लो मत। कल आपको निर्वैर भाई बहुत सुंदर बात सुना रहे थे, महात्मा बुद्ध की बात। उसने कितनी भी गालियां दी, उसने स्वीकार ही नहीं की, हमने ली नहीं। जरूरी है कि जबरदस्ती किसने कुछ कहा तो उसका दुख ले लो? जरूरी नहीं है। एक कान दो कान किस लिए? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। यू डोंट हैव टू टेक द सोरो, इट्स ऑल इन द माइंड। इफ यू टेक द सोरो और डोंट टेक द सोरो, इट्स ऑल अप टू यू। उसके ऊपर नहीं है, वो तो कह के भूल जाएगा और आप दुखी होते रहेंगे, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। तो मैंने सुख दिया, इसने दुख क्यों दिया? दुख दिया नहीं, हमने लिया। nobody can give me anything without my permission. अच्छा, फिर भी हम समझते हैं कि मैं तो सुख दे रहा हूँ, ये दुख दे रहा है। तो जैसे कल रात्रि प्रश्न उत्तर में ये बातें चली कि कितने जन्मों का कोई हिसाब किताब होगा, वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, वो चुकतू हो रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है। मैंने 10 साल पहले किसी से ऋण लिया था, लेकिन मैं भी भूल गया और वो भी भूल गया, पर 10 साल के बाद उसने अपनी किताब खोली, अपना अकाउंट बुक खोला, तो उसने देखा कि ऋण तो वापस मिला ही नहीं है, जो हमने फलाने को दिया वो आएगा मेरे पास, कि आपने 10 साल मेरे से पहले लिया था, आपने नहीं वापस किया। मैं तो कहूँ मैं तो भूल गई, वो कि मैं भी भूल गया था, लेकिन ये विद फैक्ट्स है, इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो ऋण मुझे वापस चुकतू करना ही पड़ेगा, चाहे हम दोनों ही भूल गए थे, इट इज देयर। तो जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म आत्मा के अंदर संस्कार रूप में भर जाता है, और जरूरी नहीं है कि तुरंत उसका फल मिले। अगर बहुत गहरा है वो, तो कई जन्मों तक भी मिल सकता है। जैसे लकीर हम खींचते, हवा में लकीर खींची तो पता भी नहीं चलेगा, पानी पर खींची तो थोड़ी देर के लिए वो लकीर दिखाई देगी, पर अगर पत्थर पर खींच ली लकीर किसी नोकीली चीजें से, तो वो तो सालों साल पड़ी रहेगी वहां। तो ये कर्म भी ऐसा, हाउ डीप दैट कर्म वॉज, उसके आधार पर उसका रिएक्शन वैसा ही होता रहेगा, रिकरिंग होगा, एकोइंग होगा, जैसे डोम के अंदर। और हवा पर लकीर है तो पता भी नहीं चलेगा, संकल्प आया एक सेकंड में इसको नष्ट कर दिया, खत्म, लकीर बनी परंतु पता ही नहीं चला, इसको संकल्प में मन में खत्म कर दिया, आने नहीं दिया। इसीलिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो हमको कितना ध्यान देना होगा, जिसको सभी धर्मों में ये मान्यता मानते हैं, एज यू सो सो शल यू रीप, एज यू सो सो शल यू रीप हैज सच अ डीप मीनिंग। आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम का ही फल मिलेगा, आप बबूल बोएंगे, कांटा बोएंगे तो आपको कांटा ही मिलेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि हम कांटा बोएं और फूल मिले, या ये सुंदर फल मिले, नहीं मिलेगा। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए ये हमें क्या सबक देता है कि आप औरों से वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे आप उनसे अपने लिए चाहते हो, क्योंकि आप उनसे अपने लिए अच्छा चाहते हो तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। If you want respect, give respect. If you want love, give love. Don't expect love. कई लोग कहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, है ना, देखा मैंने से, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो ये हूँ। तो हम उनसे पूछते हैं, ऐसे क्यों आप शिकायत करते हो, आप कितनों को प्यार करते हो, दूसरे प्यार नहीं करते, आपने कितनों को किया? तो सोच में पड़ जाते, मैं भी तो नहीं करता हूँ। आप करेंगे तब तो दूसरे करेंगे ना, ये क्यों दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, आप भी तो कर सकते हो। क्योंकि हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, Each soul is an embodiment of love. इसीलिए बहुत सुंदर वो कबीर का दोहा है, हाँ सुना होगा ना, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, लेकिन दो अक्षर प्रेम का पढ़ ले, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले, वही पंडित होए। बड़े बड़े पोथियां पढ़ने से प्रेम नहीं आता है, पर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ो, इसका मतलब क्या है? इट्स सो सिंपल, यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, स्टार्ट गिविंग लव एंड यू विल रिसीव एवरीवन्स लव। इसलिए डोंट आस्क फॉर दैट, यू आर दैट। तो जब हम ये बात समझते कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, यू हैव टू डू दैट फर्स्ट, एंड अगर वो हमने समझ लिया तो कर्म फिलोसॉफी भी समझ ली आपने। सो डू अन टू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अन टू यू। इसलिए दिस इज अ यूनिवर्सल एंड इटर्नल लॉ ऑफ कर्म, आर एक्शंस आर द कॉज दैट प्रोड्यूस प्रॉपर इफेक्ट्स एट प्रॉपर टाइम्स। हमारे कर्म वही कारण बन जाते जो समय पर वो इफेक्ट लाएंगे। वो इफेक्ट अगर आया है, इट इज नॉट फॉर नो रीजन, देयर इज अ रीजन, इट इज माय कॉज फॉर विच आई हैव गॉट दैट इफेक्ट। तो जब हम ये बात समझ लेते हैं तो कर्म फिलोसॉफी को बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। लेकिन कर्म फिलोसॉफी में भी जब हम कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, उसमें भी तीन एस्पेक्ट्स हैं। जरूरी नहीं है कि जितना हम बोते उतना ही मिलता है, उनसे कितना गुना ज्यादा भी मिलता है। नाउ दिस कैन बी बोथ वेज, अच्छे कर्म का फल बहुत ज्यादा भी मिल सकता है और बुरे कर्म का भी फल बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, यानी जितना किया उतना ही मिलेगा। एक व्यक्ति ने चोरी की तो उसको चलो एक साल की सजा मिली चोरी की, पर फिर उसको एक साल के बाद छोड़ा, फिर दूसरी बार उसने फिर चोरी की, फिर पकड़ा गया तो पहला रिकॉर्ड देखा जाता है ना कि इसने पहले भी चोरी की है, अभी दूसरी बार चोरी है, तो उसकी सजा एक साल की नहीं होगी, फिर और पांच साल की होगी, है ना, सजा बढ़ गई क्योंकि पहले का रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। तो इसीलिए कर्म फिलोसॉफी को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा, यू रीप मच मोर देन यू सो, एंड थर्डली यू रीप एट अ डिफरेंट टाइम देन यू सो। ये नहीं कि आपने बोया और तुरंत आपको फल, नौकरी करते हैं एक महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, एक महीना तो नौकरी की, ये नहीं है कि किया और पाया, यू कैन गेट इट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और जब मिलेगा तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बीज तो डालना पड़ेगा ना, बीज थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा, पर वो त्याग त्याग नहीं है, बहुत बड़ा फल है। भाग्य ऐसे ही नहीं मिलता है बिना त्याग के, कोई भी भाग्य बिना त्याग के मिला नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई लोग हम लोगों को कहते हैं बहन जी आप लोगों का त्याग बड़ा जबरदस्त है, ये हमसे नहीं होगा। हाँ तो हम कहते क्या त्याग है, कुछ भी नहीं, क्या त्याग है? तो कहने आप लोग सफेद कपड़े पहनते हो, गहने नहीं पहनते हो, बाहर का खाते नहीं हो, ये नहीं करते हो, ये नहीं करते, ये त्याग है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है, थिंक इन अ पॉजिटिव वे। आजकल बहुत ही देखिए क्या क्या हो रहा है संसार में, और यही कहते भाई थोड़ा यू ड्रेस सिंपली, ये क्यों इतने सारे हो रहे हैं, क्या क्या रेप्स हो रहे हैं, जो कुछ आप अगर सिंपल ड्रेस में हैं, कुछ भी है, नोबडी विल डेयर कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो, हमारी प्यूरिटी उनको आकर्षित करेगी और वो उस इतना रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन हमारा ही ऐसा व्यवहार होगा, यू कांट एक्सपेक्ट कि वो आपसे आपको देवी रूप में देखे। तो इसीलिए हमारे ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि हमारे अंदर की त्याग वृत्ति कितनी है। और दूसरी बात, कई लोग यहां तक आकर के कहते हैं बिल्कुल अपोजिट, वो कहते हैं कि बहन जी आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सो लकी यू पीपल आर, सो लकी आप, तो हम कहते हैं कैसे आप मानते हैं, आप भी तो लकी हो। तो कहते नहीं, आप लोग इतने अच्छे वातावरण में रहते हो, कितना अच्छा आपको शुद्ध भोजन मिलता है, कितनी ऊंची ऊंचा 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 ज्ञान देते हो, कितनी ऊंची बातें हैं ये। हम लोगों का तो जीवन ऐसा ही बेकार गया, यहाँ तक भी कह देते हैं। तो कोई कहते हैं हम बहुत भाग्यवान हैं, और कोई कहते हैं बड़ा त्याग है। अभी व्हाट इज द राइट थिंग, व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द ट्रुथ? बहुत भाग्यवान है, त्याग नहीं है क्या? है? अब नाउ जॉइन बोथ। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, दिस इज हाउ यू जॉइन बोथ। बिना त्याग के एक बीज का भी त्याग करना पड़ता है ना, धरती में डालना पड़ता है। आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो भले 5 रुपया भी देंगे ना, डालेंगे ना, लेकिन आपको पता है कि विथ इंटरेस्ट हमको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपने वो आपका वो त्याग नहीं है, पर वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका रिटर्न विथ इंटरेस्ट यू विल गेट। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, वो जो कैपिटल अमाउंट बैंक में डालते हैं उसको इतना नहीं महत्व देते, इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, वो ब्याज कितना मिला। हम कभी कभी हंसी में कहते हैं कि माता पिता है, बच्चों को बड़ा किया, पाला पोषा, चलो फिर उनको अलग कर देते हैं, थोड़ा मोह त्यागते हैं। लेकिन जब उनके पोतरे दोतरे होते ना, तो पोतरे दोतरों में जितना मोह हो जाता उतना बच्चों में भी मोह नहीं जाता है। बच्चों से ज्यादा पोतरे दोतरे बड़े प्यारे लगते हैं। तो हम कहते हैं क्यों, बच्चों में ज्यादा मोह होना चाहिए ना, जिनको आपने जन्म दिया पाला। कहते नहीं, पोतरे दोतरे ब्याज के रूप में मिले हैं क्योंकि हमने तो कोई मेहनत ही नहीं की तो वो तो ब्याज ही मिला ना, विथ इंटरेस्ट। तो इसीलिए उसमें ज्यादा मोह चला जाता है, क्योंकि नाम ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माना समथिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो इसीलिए कर्म फिलोसॉफी मीन्स यू रीप मच मोर एंड देन यू रीप नॉट एट द सेम टाइम। थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आप भी डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट को कहेगा भाई दिस विल टेक 15 डेज, इट विल हील। समय, टाइम इज अ वेरी बिग हीलर। दवाई तो है लेकिन टाइम इज अ बिग हीलर, तो टाइम तो लेगा। तो इसीलिए यू रीप एट अ डिफरेंट टाइम देन यू सो, इससे थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। वॉट यू सो दैट यू रीप इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप मैंगो सीड्स डालेंगे तो आपको अनार या अमरूद नहीं मिलने वाला है, जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। लेकिन जब हम कहते हैं यू ऑलवेज रीप मोर देन यू सो, जैसे एक हमने प्लांट बोया, एक बीज बोया, हाँ वो बीज का कितने उसके फल मिलेंगे, कितने फल मिलेंगे। और सारे बीज के फल कोई ऐसे नहीं कि उतने ही टाइम में मिलते हैं। आप एक नारियल का बीज डालिए, नारियल का बीज डालने के बाद आपको कितना इंतजार करना पड़ता है नारियल लाने में, नारियल आने में 10 साल तक भी इंतजार करना पड़ता होगा। और परंतु एक बार नारियल मिलने शुरू हो गए तो सारा साल मिलते रहते हैं, सारा साल, यू नो इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आम का बीज जो बोएंगे, पहले जमाने में कहा जाता था दादा बोए और पोता खाए। दादा जी बोता था आम का बीज, और उसके जमाने में तो उस पेड़ से फल नहीं मिलते थे, बहुत टाइम लगता था। पोते पोता खाता था, उसका पोतरे को मिल जाते थे वो फल। एक बूढ़ा आदमी आम का बीज बो रहा था तो किसने कहा, रे तुम तो बूढ़े हो गए, तुम अभी आम का बीज बो रहे हो, फल कहाँ मिलने वाला है तुम्हारे जमाने में, तुम तो मर जाओगे उसके पहले, फल मिलने से पहले। कहते कोई बात नहीं, मेरे दादाजी ने जो बीज बोया था ना वो मैं अभी खा रहा हूँ, मेरे दादाजी के बोए हुए हैं, तो मैं बोऊंगा तो मेरे पोते खाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कर्म फिलोसॉफी ऐसे नहीं है कि दादा बोए और पोता खाए, ऐसे है क्या? एक चुटकुला सुनाते, कहीं मैंने पढ़ा था, किसी रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लिखा था, आप ईट जितना खाना चाहो खाएं, पेट भर के खाएं, और आपका बिल आपके पोतरे भरेंगे। ये बोर्ड लिखा था बोर्ड पर, योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल पे योर बिल, यू कैन ईट एज मच एज यू वॉन्ट। तो गया खाया, खूब खाया और बिल आ गया। तो कहा आपने तो लिखा है ना कि आप खाइए आपके पोतरे भरेंगे। तो कहा भाई साहब ये आपके दादाजी का बिल है। वो भूल गया कि मैं भी तो किसका पोतरा हूँ ना। मैं भी किसी का पोतरा हूँ तो क्या मेरे खाली पोतरे हैं, मैं किसका पोतरा नहीं हूँ क्या। तो कहने का भाव है कि वो जो आपने खाया बिल तो आपको ही चुकतू करना है ना, बाय मींस दैट। ये तो आकर्षण करने लिए चलो कह दिया। तो कहने का भाव है कि अगर कर्म मैंने किया है तो मुझे ही भोगना है, मुझे ही पाना है। परंतु यू सो एट अ डिफरेंट टाइम एंड यू रीप एट अ डिफरेंट टाइम। So always remember that just because we don't see the results of our actions at that time immediately doesn't mean that we won't reap the fruit. ये भी बहुत बड़ा धोखा हम खा सकते हैं। कोई ऐसे हम करते हैं कुछ भी, या बहुत कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी क्या नहीं घोटाला करते हैं, बहुत न्यूज आती है, क्या नहीं करते हैं, विदेश जाकर के भी करते हैं, भारत का नाम बदनाम करते हैं, और कोई तो इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। तो हम देखें कि उस समय तो पता भी नहीं चलता, किसको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, हू विल नो, मैं बहुत होशियार हूँ, आई कैन हाइड एवरीथिंग। लेकिन जिस समय वो पोल खुलता है तो सारी की कमाई सब चट, सब खत्म, नाम भी बदनाम, सब कुछ हो जाता है। क्यों नहीं होता, होता है। अब इसका डिटेल क्या बताऊं, तो इसलिए डजंट मीन दैट यू वोंट रीप द फ्रूट। तो इसलिए अब परंतु क्यों इतना अंतर है, वो आम का बीज फिर भी सीजन में मिलेगा, नारियल तो पूरा साल मिलेगा, और वो भी चलो मिलेगा तो उसके लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही तो नहीं होता है। तो एक जर्नी है from sowing to reaping, it needs care all the time, it needs care। केवल बीज डाल दिया यही सब, यही बड़ी चीज नहीं है। बीज डालने के बाद फिर आपको उसके पहले भी कितनी मेहनत है। इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत का काम तो हमारे किसानों को है, और कितनी बड़ी विडंबना कि सबसे गरीब वही है जो इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए ये सारी बातें आज देश में उभर रही है किसानों की। तो पहले तो हल चलाना होगा, बीज ऐसे ही डालने से कोई फल नहीं निकलने वाला है, हल भी चलाना है, फिर बीज डालना है, फिर उस बीज को पानी देना है, फिर जो नए नए पत्ते आते हैं उनका प्रोटेक्शन चाहिए, और चलो फल निकलना शुरू हो गया तो फल निकलने के बाद कच्चा भी नहीं तोड़ना है, अनराइप है और आपने तोड़ दिया, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तोड़ दिया, लेकिन इट्स नो यूज क्योंकि इतना कड़वा होगा जो वो फली वेस्ट चला गया। इसलिए अनराइप फ्रूट को अगर हम पेड़ पर ही पकाते हैं तो वो तो बहुत मीठा बनता है। इसलिए कहा जाता है धीरज का फल बड़ा मीठा है, धीरज रखो, धीरज। लेकिन इंसान के पास धीरज कहाँ है, मैंने इतना उसको दिया इसने मुझे क्या दिया, तुरंत आ जाता है, मैं इसके लिए कर रही तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूं। इसलिए अलाउइंग फ्रूट टू राइपन, और जब फ्रूट पक जाए, ये आपको अभी जो वर्तमान स्वरूप है ये फल है, आपके पिछले बीज के बोने का परिणाम है ये। तो अभी जो फल है इसको खाओ, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। आपके पास जो ज्ञान है वो यूज करो, आपके पास जो टैलेंट्स है, जो कुछ आपके पास, इसको यूज करो, सफल करो, और जितना यूज करते जाएंगे उतना आपका कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस विल ग्रो, यू विल बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड। जितने पुराने डॉक्टर्स, पुराने एक्सपीरियंस, दे हैव मोर वैल्यू, डेफिनेटली। तो इसलिए उसको जितना देते जाएंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। इसलिए खाओ और खिलाओ, अपने पास ही रखेंगे वो भी सड़ जाएगा। कई बार घरों के अंदर इतना फल आता है जो खाने की फुर्सत नहीं होती है, फ्रिज में पड़ा ही है, सूख गया, सड़ गया, पता भी नहीं चलता, याद ही नहीं है, न खाया न खिलाया। अरे फ्रूट है तो इट इज मेंट टू ईट एंड शेयर। तो आज अगर मेरा तन निरोगी है, मान लीजिए आई एम हेल्दी, इट्स माय ड्यूटी कि मैं इस शरीर को, इस तन को सफल करूं, सेवा में लगाऊं। अगर सुस्त बन के सोई रहूंगी तो ये हेल्थ भी खत्म हो जाएगी। तो तन से भी सेवा करो, मन से भी सेवा करो, धन से भी सेवा करो, अपने अच्छे गुणों से भी सेवा करो, और जितना करेंगे उतना आपका बढ़ेगा। ये बीज डालना है, अभी फल पा रहे हैं, फिर बीज भी साथ साथ बोना है। तो आम के आम और गुठली के भी दाम आपको और 100 गुना होकर के मिलेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसको कैसे सफल करो। आपके अंदर में अच्छे संकल्प आए तो वाणी द्वारा सुनाओ, कर्म द्वारा करो, फिर उनको वही आपकी आदतें बनेगी, वही आपकी पर्सनालिटी बनेगी, वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। और अगर कोई ऐसा बुरा संकल्प आया, तुरंत निप इन द बड, उसी वक्त उसको नष्ट करो। इसलिए गाड़ी के अंदर ब्रेक भी बहुत जरूरी है, नो, ये मुझे नहीं सोचना है। तो जैसे आपने नो कहा, आपने उस थॉट को, आपने ब्रेक लगा दिया। और अगर उस सोच को बढ़ाते रहे, एक दिन वो शब्दों में आ जाएगा, फिर वो कर्मों में भी आ जाएगा। इसीलिए वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस फॉर दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स फॉर दे बिकम योर पर्सनैलिटी, एंड वॉच योर पर्सनैलिटी, नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल, और वॉच योर पर्सनैलिटी बिकॉज दैट विल फॉर्म योर डेस्टिनी। ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी है, ये सब कर्म के आधार पर है। तो इसलिए जैसे ही हमने इस बात को समझा, हमें अपने कर्मों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर योर एक्शंस। उसने मुझे एनकरेज किया ना, इसलिए मैंने किया। अरे वो कुछ भी आपको एनकरेज करने कुछ कर, आपको बुद्धि तो है ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स। जैसे हम स्ट्रेस के लिए कहते हैं, डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर योर स्ट्रेस। You are the master of it. You are responsible for your stress. Your thoughts, your feelings, your emotions, they are responsible. So you should be able to change them. Don't blame others for it. हम दूसरों को blame करते इसके कारण पर, तीन उंगलियां हमारे तरफ है। वो एक कारण दोषी हो सकता है, पर तीन कारण मैं खुद हूँ। 3/4 responsible is me. Not that person. इसलिए I have to take this karma as my own responsibility if I'm getting the fruit. Don't blame anybody else for it. तो जब हम ये responsibility लेते हैं, we are standing on some ground. Because ये actions ही हमारी real belongings है, यही हमारे साथ चलेंगे, बाकी कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। वस्तु, धन, दौलत, बच्चे, कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। न कुछ लाए हैं, न ले जाएंगे। आत्मा को ये शरीर भी साथ नहीं देगा, लेकिन केवल जो आत्मा ने शरीर द्वारा कर्म किए हैं, वो संस्कार बन के आत्मा के साथ जाएंगे। इसीलिए किसको हम महत्व दें, जो हमारे साथी बनकर चलेंगे। जो साथी बनेंगे ही नहीं, हम उसको महत्व दे रहे हैं, धन को महत्व दे रहे हैं, जो सबसे पहले छोड़ेगा हमें। शरीर को भी बहुत महत्व दे रहे हैं, वो भी छोड़ देगी आत्मा को, छोड़ देगा आत्मा को, और कर्म जो आत्मा के साथ जाने वाले उस पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो कितना धोखा खाते हैं। तो इसीलिए कर्म शुड नॉट बी एक्चुअली फियर बेस्ड। अभी कई लोग डर जाते हैं, हाय मैंने ये किया है अभी मुझे क्या फल मिलेगा, डोंट बी फ्राइटेंड ऑफ इट। जैसे कल आपको निर्वैर भाई ने बताया कि भगवान से भी डरो मत, भगवान तो प्रिय चीज है, उनसे प्रेम करना सीखो, गॉड लविंग बनो, गॉड फियरिंग नहीं बनो। इसी प्रकार कर्म लविंग बनो, कर्म फियरिंग नहीं बनो। हाँ, कर्म का इतना ज्ञान मिलने के बाद कई डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। डोंट फियर बट लव इट, कि ये कर्मा फिलोसॉफी इज गोइंग टू गिव रियल जस्टिस। क्यों? क्योंकि अगर फियर बेस्ड होगा तो बहुत सुंदर लिखत है, यू रीप व्हाट यू सो, कर्मा इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज द बोथ गुड एंड बैड दैट आर ब्रॉट टू यू बेस्ड ऑन योर एक्शंस, गुड एंड बैड यू आर जज बाय योर एक्शंस। पर अगर इसको लव बेस्ड लेंगे तो इट्स अ गिफ्ट, कर्मा फिलोसॉफी इज अ गिफ्ट that brings you lessons for your soul's personal growth and will continue to bring these lessons back around until you have learned from them, but make sure that you don't learn it too late, because it will be too late then. And therefore jab hum karma se pyar karna shuru karte hain, how people treat you is their karma, but how I react is my karma. Don't forget that. उसने ऐसे क्यों किया? Don't question. उसने किया वो पाएगा, पर मैंने ऐसे क्यों किया ये अपने आप से पूछना है। और जब हम अपने आप से ये पूछेंगे तो I won't blame anybody else. So how you react is your karma. So by understanding the law of karma, I make myself totally responsible for my life. I don't blame anybody else for my life. And I don't blame anybody else. Instead, I develop tolerance, acceptance and endurance and experience inner power and peace. This is what we experience. और परमात्मा ने हमें कर्मा फिलोसॉफी के अंदर ये भी बताया, कई कहते हैं ये कर्मा फिलोसॉफी को छोड़ो ना, हमको तो कर्म ही नहीं करना है, इसलिए कई सन्यासी बन जाते हैं, ये सब चाहिए ही नहीं, दुनिया संसार ही नहीं चाहिए, ये सब माया है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, गृहस्थी माया है। हम कहते ये सब माया नहीं है, यू नो बिग डिफरेंस, ये सब माया नहीं है, बच्चे माया नहीं है, ये तो फूल है, बच्चे फूल है, कितने प्यारे होते हैं, सो इनोसेंट। लेकिन हाँ, बच्चों के प्रति जो मोह है, अटैचमेंट्स, ये माया जरूर है, अटैचमेंट इज माया, बच्चे माया नहीं है, धन माया नहीं है, धन तो जरूरी भी है, लेकिन धन के प्रति जो लोभ है, आसक्ति है, वो माया है। इसीलिए कहा गया है, हाँ एक बहुत सुंदर कहावत है, लोभी नर कंगाल है, जो व्यक्ति लोभी होता है वो कंगाल है। क्यों? क्योंकि सदा चाहिए 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 चाहिए, ना देना है देना नहीं, लेना है लेना है लेना है लेना है, लोभी नर कंगाल है। निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत। तो लोभी बन के कंगाल नहीं बनना है, पर निर्लोभी बन के ईश्वर देता है, इस विश्वास पर रहो, क्यों नहीं मिलेगा, आप दाता बनो। तो जब हम ये बात सोचते हैं तो मुझे अपने कर्मों को एलिवेटेड बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो किस प्रकार के कर्म हम करें? चार प्रकार की एटीट्यूड्स हैं, चार प्रकार की वृत्तियां हैं। एक वृत्ति वो है जिसको हम कहते हैं डेविलिश एटीट्यूड, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, समझा ना, मैं अपना तो नहीं दूंगा लेकिन तेरा भी छीनूंगा, तेरा सो मेरा मेरे हाथ न लगा, ये डेविलिश एटीट्यूड है। बाय हुक और बाय क्रूक, छल कपट निंदा चुगली बेईमानी हेरा फेरी झूठ पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपना करके दूसरे की चीज भी जब्त करना, ये डेविलिश एटीट्यूड है। और फिर है ह्यूमन एटीट्यूड, वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, yours is yours, mine is mine, I don't care for yours but I will not give you mine, ये human attitude है। भाई भाई के बीच में partition कर दी, बाप ने अलग किया, चलो उनको property दी, उनको property, मकान बहुत बड़ा, partition कर दिया, तुम अपने घर सुखी रहो, मैं अपने घर सुखी, तो मेरे पास नहीं आना, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, भाई भाई का प्यार खत्म। तो ऐसा भी न हो, वो ह्यूमन एटीट्यूड क्या किस काम का, परंतु उनसे श्रेष्ठ है डिवाइन एटीट्यूड, माइन इज माइन एज वेल एज योर्स, क्यों नहीं, हम सबका है, आपका भी है हमारा भी है, ये तो भगवान का है। और वो फिर योगी एटीट्यूड बन जाता है, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब ईश्वर का है। हम गाते तो हैं, आरती करते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते होंगे ना आप लोग भी, आरती करते होंगे, तो ये तन मन धन ईश्वर ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आरती पूरी हुई, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, सब भूल गए। इसीलिए ये योगी एटीट्यूड, सचमुच मेरा कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर का है, ये या कहेंगे नेचर से जो कुछ लिया ये नेचर को वापस देना है। व्हाट यू हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू यू एंड व्हाट यू मेक ऑफ इट विल बी योर गिफ्ट टू गॉड और बैक टू नेचर। एक बहुत ऊंची बात है ये, जिसको हम समझेंगे, और इसके आधार पर चार प्रकार के कर्म हो जाते हैं। हम दो प्रकार के कर्मों को तो जानते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म, लेकिन भगवान ने हमको चार प्रकार के कर्म बताए हैं। हम जो करते हैं वो चार प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन समय अलग अलग है, इसलिए ये चार युग बन गए। ऐसे ही नहीं युग आए, कर्म के आधार पर युग आए हैं, ऐसे नहीं युग के आधार पर कर्म आए हैं। कई कहते क्या करे बहन जी, कलयुग है ना, कलयुग है तो कलयुग है, इसीलिए ऐसे तो होगा ही ना सब, लेकिन कलयुग क्यों आया, आपके कर्मों के कारण आया। अब कर्मों को बदलो तो युग भी बदल जाएगा। तो कौन से है चार प्रकार के कर्म, एक तरफ है पाप कर्म, दूसरे तरफ है पुण्य कर्म, तीसरे तरफ है श्रेष्ठ कर्म, और चौथे तरफ है न्यूट्रल कर्म, अकर्म जिसको हम कहते हैं। कर्म है तो भी वो कर्म का रूप नहीं है। अब इन चार कर्मों को हमें समझना होगा। सिंफुल एक्शंस हम किसको कहते हैं, पाप कर्म हम किसको कहते हैं। पाप कर्म की परिभाषा बहुत गहरी है। कई कहते कैसे पता चले ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। पाप कर्म की परिभाषा है और पुण्य कर्म की परिभाषा में अंतर क्या है, कुछ तो डिमार्केशन लाइन है ना। कई कहते हैं कि वन मैन्स पॉइजन अदर मैन्स फूड, एक व्यक्ति के लिए वही पॉइजन है पर दूसरे व्यक्ति के लिए वही भोजन है, लेकिन पॉइजन तो पॉइजन है ना, पॉइजन तो फिर भी पॉइजन है। आपकी मेडिसिन में वो आप प्रिस्क्राइब करेंगे परंतु भाई ये इट इज हार्मफुल ऑल्सो, टेक अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही दवाई ले लो, आप नींद की गोली लेंगे चलो एक लेंगे, अगर 20-25 ली साथ में तो कोई बात नहीं, थोड़े और ज्यादा सो लेंगे तो ज्यादा सोएंगे, सदा के लिए सो जाएंगे, तो लिमिट है उसकी। तो कर्मा फिलॉसॉफी के अंदर पाप की परिभाषा क्या है? जो भी कर्म देह अभिमान से होते हैं, मैं और मेरा, ये पाप की परिभाषा में जाते हैं। मैं अभिमानवश मैं कहा और मोहवश मेरा कहा, ये पाप की परिभाषा है, ये पाप है। अब मैं और मेरा हम सारा दिन कितना बोलते रहते हैं, कितना कहते हैं अभिमानवश और मोहवश, ये पाप के खाते में जा रहा है। पर कहां हम समझते हैं? बहुत सुंदर किसी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का, पाप की जड़ अभिमान है। पाप की जड़ केवल ये नहीं है झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, पता है ना, प्रसंग अलग अलग है। और सबसे बड़ा पाप तो हम झूठ का यही कर रहे हैं, जो हम है आत्मा और सारा दिन मैं शरीर के लिए कह रहे हैं। तो जितना हम शरीर के लिए मैं कह रहे हैं, उतना पाप का खाता हमारा बन रहा है। क्योंकि जैसे ही मैंने मैं कहा, देह अभिमान में कहा, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी, ये सारी विकृतियां आ जाएगी और हमारा पाप का खाता बढ़ता जाएगा। इसीलिए पाप की जड़ है देह का अभिमान। कई लोग कहते हैं आत्मा का ज्ञान, आत्मा आत्मा आत्मा, ये क्या करते रहते सारा दिन, ये ब्रह्मा को आत्मा आत्मा करती रहती है। लेकिन आत्मा के ज्ञान से पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा निश्चय करने लगते हैं, हमारे कर्म बदल जाते हैं। तो पाप की डेफिनेशन है कोई भी कर्म देह के अभिमान के वश किया हुआ। फिर पुण्य कर्म किसको कहेंगे? पुण्य कर्म के लिए तो बहुत सी व्याख्याएं हैं। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर अच्छा कर्म करो, किसी की भलाई करो, फिर याद भी मत करो कि मैंने कोई भलाई भी इनकी की है। वो भले कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने बड़ा एहसान किया मुझ पर, आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, आप स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल, दरिया सागर जितना बड़ा दिल हो। पहले जमाने में नेकी दरिया के साथ भेंट करते थे कि नेकी किया अच्छा कम किया सागर में डाल दिया, लेकिन धीरे धीरे नेकी काम कम होने लगा तो कहावतें भी बदलती गई। नेकी कर कुएं में डाल, इतना ही कुआं इनफ है, दरिया सागर तो बहुत बड़ी चीज है, कुआं ही भरे वही बहुत है। धीरे धीरे ये कहावत भी बदल गई, नेकी कर खड्डे में डाल, फिर खड्डा ही ना फिर फिर धीरे धीरे तो मुझे किसी ने, मैं तो यहां तक ही जानती थी, आगे तो नहीं जानती थी, लेकिन किसी ने मुझे इसमें भी और एडिशन कराई। उसने कहा बहन जी आजकल नेकी इतनी, नेकी कर पॉकेट में डाल है? नेकी कर पॉकेट में डाल जी, इनसे आगे भी है क्या आ रहा है? नेकी कर दूसरे के कान में डाल, कुत्ते के, ऐसा तो नहीं कहो बस 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 कोई बात नहीं, डोंट नो बी आई डोंट वांट टू नो मोर। तो इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल, ये इतनी ऊंची बात है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर आपका ये दायां हाथ दान करता है, कोई चैरिटी करता है, इतना गुप्त करो कि बाएं हाथ को पता भी न चले, इतना गुप्त हो। गुप्त दान महाकल्याण, राइट हैंड करे और लेफ्ट हैंड को पता न चले, ये गुप्त दान ये महाकल्याण बन जाता है। अगर आपने दान किया और दुनिया को बताया मैंने ये किया मैंने ये किया, उसमें भी अभिमान दिखाया, वो पुण्य तो आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, दान उनको ही करो जो सचमुच नीडी है, आवश्यकता है नहीं, लेकिन अपने मान शान के लिए आप दान करते हैं। हम तो कई रोटरी क्लब, लाइन क्लब्स में भी ये बातें कहते हैं। मैं मुंबई में गई थी, वहाँ एक रोटरी क्लब में प्रोग्राम था हमारा, तो वहाँ बता रहे थे कि हमने क्या किए, इतने सारे कंबल दान किए मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों में, कंबल दान किए, लेकिन कुछ समय के बाद जब उन झुग्गी झोपड़ियों में फिर से कुछ और देने के लिए गए तो देखा कंबल तो है ही नहीं, वो झुग्गी झोपड़ी से कंबल कहाँ चले गए, तो कहा वो तो बेच बेच करके शराब वराब पी लिया। अरे उनको क्या कंबल की जरूरत है, वहां तो सर्दी होती ही नहीं है। कंबल तो वहां दान करो जहां बहुत ठंडी है, और झुग्गी झोपड़ियों में कंबल क्या करेंगे, वो तो आवश्यक ही नहीं है। सचमुच कोई जरूरत नहीं। मुंबई में तो मैं मुंबई की हूँ, मैंने 20 साल तक वहां, इसके बाद बाहर निकली, कभी स्वेटर शॉल क्या होता पता ही नहीं था, जरूरत ही नहीं होती। अभी थोड़ा होने लगा है, कुछ कुछ कहते हैं कि ठंड थोड़ी पड़ती है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो जो चीज की आवश्यकता नहीं और वो मुझे दान में अगर दी जाती है तो आई वोंट लाइक इट मच ना भाई, कुछ काम की चीज तो ना मेरे लिए, केवल नाम मान शान के लिए वो दान कर रहा है क्या। इसीलिए पुण्य तब बने जब दो बातें हो, एक तो पुण्य करने के बाद या जो भी दान किया उसका अभिमान आए, और दूसरा जिसको आवश्यक हो उसको करो, जो पात्र हो। अगर कुपात्र है, कुपात्र है, वो पात्र नहीं है, उसके योग्य नहीं है, आप किसी को धन दान करेंगे और वो उससे जाके शराब पिया, ये सब गलत काम किए, यू बेटर बी केयरफुल आप किसको दान कर रहे हो। इसीलिए यहाँ हम कहते, कई कहते हम लोगों को कहते आपकी संस्था में इस प्रकार के गरीबों को दान ये सब क्यों नहीं करते। हम कहते हैं कि फाउंडेशन मनुष्य का चरित्र है, पहले वो उसको ठीक किया जाए, वो बेसिस आधार हमारा सही हो, प्लाउइंग द फील्ड, वो फील्ड तो सही हो, बीज डालेंगे और फील्ड आपने जो मेहनत तो कुछ की नहीं है, जो उसका चरित्र भी थोड़ा ऊंचा करो, फिर आप भले बीज डालो तो वो फलीभूत होगा। अगर हल ही नहीं चला है, ऐसे ही बीज डाल दिया आपने कि आप अपने नाम मान शान के लिए, वो पुण्य नहीं बनेगा, ये भी समझ लो। इसीलिए पुण्य कर्म माना कि आप दान करते हो तो पुण्य बनता है, लेकिन सच्चा पुण्य तो पहले वो है कि मन से पुण्य करो, अच्छे विचार सबके प्रति लाओ, वाणी से पुण्य करो, ज्ञान दान दो, कर्म से पुण्य करो, श्रेष्ठ कर्म करके अपने गुणों से किसी को प्रेरणा दो, वो और ऊंचा है। इसीलिए जब हम ये दान की बात करते उसमें ये सब बातें आती है, मन वचन कर्म से बहुत बड़ा पुण्य बन सकता है। और फिर क्या करो, अपने एक्शंस को भगवान को दे दो। बहुत सुंदर है ये, गीता का बड़ा सार है ये, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, लेकिन फल ईश्वर को छोड़ दो, फल की चिंता मत करो। वैसे तो डॉक्टर्स यही कहते हैं, आई ट्रीट एंड गॉड क्योर्स। डॉक्टर साहब मेरा भाई ठीक होगा, मेरा बच्चा ठीक होगा, क्या होगा क्या होगा, तो आप कहेंगे कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान को याद करो, आई ओनली ट्रीट। डू यू क्योर और डू यू जस्ट ट्रीट, वॉट विल यू से, यू कांट क्योर, वो तो उसका कर्म उसके साथ है, कर्म उसके साथ है, आपने केवल ट्रीट किया बस, बड़ा अंतर है दोनों में। आपने उपचार किया पर निदान करना ये तो ईश्वर के हाथ में, उसके कर्म अनुसार है। इसलिए सरेंडर योर एक्शंस आफ्टर यू हैव डन गुड एंड गिव लीव द फ्रूट टू गॉड, एक्सपीरियंस पीस एंड पावर। तो इसीलिए अब ये जरूरी है। और फिर एलिवेटेड एक्शन, तीसरे प्रकार के कर्म हम लोग बताते हैं जो सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, शुभ कर्म है, सुकर्म है, वो कौन से कर्म है। वो सेल्फलेस एक्शंस परफॉर्म्ड विद सोल एंड गॉड कॉन्शियस एटीट्यूड, मैं आत्मा की स्थिति में परमात्मा की याद में वो कर्म करूं, वो सत्कर्म बन जाएंगे। रिटर्न आपसे लेने के लिए ये कर्म नहीं कर रहे हैं हम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कई लोग, एक व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत रख के मेरे से एक प्रश्न पूछा, बहन जी आपको कितनी तनख्वाह मिलती है ये सब ज्ञान देने, हाउ मच आर यू पेड? आई सेड पेड, गॉड इज गिविंग मी सो मच, सो मच। जो 21 जन्म तक हम खाते रहेंगे ये पेड क्या करना है, 21 जन्म तक मनुष्य से देवता बन करके हम खाएंगे ही, इतना भगवान हमको देता है, अभी पे लेकर के क्या मैं अभी हिसाब किताब पूरा कर लूं क्या? आई डोंट नीड एनीथिंग। कई यहाँ तक आकर के 100 रुपया हाथ में देंगे, बहन जी आपने बड़ी मेहनत की, 1.5 घंटा आपने भाषण किया, आपको थोड़ा सा हम ये देते हैं। कहते नहीं, आप बाबा की भंडारी में डालें, बाबा की भंडारी है, हम भगवान के हाथ से खाते हैं, आपका थोड़ी खाएंगे, हिसाब किताब बन जाएगा। यानी दैट मच वी पे अटेंशन टू, हम आपसे नहीं लेंगे, आप ईश्वर को तो ईश्वर मुझे देगा, परमात्मा को बीच में लाओ, ये बहुत ऊंची बात है। इसलिए एलिवेटेड एक्शंस क्या है, दे आर सेल्फलेस एक्शंस परफॉर्म विद सोल एंड गॉड कॉन्शियस एटीट्यूड। आप भी आत्मा ही हैं, हम भी आत्मा, आपके सामने पेशेंट आए, केवल पेशेंट रूप में उसे मत देखें, आप उसको एक आत्मा रूप में देखें। देखिए आपके अंदर इतनी खुशी बढ़ जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और वो भी परमात्मा का बच्चा है ये समझ करके उनके साथ आपका व्यवहार होगा, और वो भी इतना सुकून महसूस करके जाएगा, एंड देन ही रियली कॉल यू नेक्स्ट टू गॉड, व्हाई नॉट। ऐसे ही नहीं नेक्स्ट टू गॉड बनेंगे डॉक्टर्स, वो तो लूटने वाले बन जाते हैं कई तो, हाँ बुरा नहीं मानना लेकिन है जी जी। हाँ उनकी लेन देन क्या, भले आपकी जो फीस है वो तो भले लो ना, लेकिन ऐसे भी तो नहीं कि आप उनका उनको चूसना, यू नो किसी को परमानेंट पेशेंट तो कभी नहीं बनाना, परमानेंट पेशेंट कभी नहीं बनाना। वकीलों को भी कहते हैं, वकीलों के भी परमानेंट क्लाइंट्स बन जाते हैं, यू डोंट वरी आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, हम किसी न किसी तरह से आपको छुड़ा देंगे। लेकिन नहीं, हम वकीलों को कहते आप यहाँ अपने जो क्लाइंट को आपने भले थोड़ी सजा कम कराई, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपको धर्मराजपुरी में कहीं सजा न भोगनी पड़े। हाँ अपने आप को भी ध्यान रखना, हम तो इसीलिए डॉक्टर्स को भी यही कहते, इसलिए डबल डॉक्टर बनो, किसी का अंतर का दुख भी लो, उसको भी उस प्रकार से मदद करो, क्यों नहीं करो। खाली फिजिकल दवाई देना यही बड़ी चीज नहीं है, आपकी दुआएं भी उनको काम करेगी और उसकी दुआएं आपको काम करेगी, ये भी हम देखते हैं। हाँ बहुत कुछ है, इसमें अभी समय नहीं है। इसलिए बेसिस ऑफ एलिवेटेड एक्शंस क्या है, पहले हमारा सॉइल ऑफ कैरेक्टर इन लाइफ, ये बहुत जरूरी है। फिर सीड ऑफ एलिवेटेड एक्शंस, मैन्योर ऑफ डिसिप्लिन्स, क्लाइमेट ऑफ गुड संस्कार्स, वाटर ऑफ गॉड्स रिमेम्बरेंस, एयर ऑफ प्योर एटमोस्फियर, सनलाइट ऑफ नॉलेज एंड फेंसिंग ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड पेशेंस फॉर फ्रूट टू राइपन एंड फ्रूट ऑफ कंटेंटमेंट टू ईट एंड शेयर। आर यू रेडी फॉर दिस? पार्डन, सुनाई नहीं देता क्या वो? आर यू रेडी फॉर दिस? दोज हू से वी आर रेडी फॉर दिस, आप बदल कर जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल बदल कर जाएंगे। और फिर परमात्मा हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं कि इन एलिवेटेड एक्शंस का फल क्या होगा, नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी, मानव देव बन जाएगा। इतना सुंदर ये संसार का परिवर्तन हो जाएगा, ये सतयुग आ जाएगा, जिस सतयुग में हम इतने ऊंच देवताएं बनेंगे। फिर कई हमसे और प्रश्न करते कि अगर हम इतने ऊंचे देवता बनते फिर हम नीचे क्यों आते हैं, साइकिल विल स्पिन, हम फिर नीचे क्यों आते हैं। अब इसके पीछे भी एक राज है कि ये जो श्रेष्ठ कर्म हमने किए जिनका ये फल पाया सतयुग त्रेता में हम पाते हैं, वहां हमारे कर्म कैसे होंगे, वहां सत्कर्म या श्रेष्ठ कर्म सुकर्म की बात नहीं है, वहां हमारे सब कर्म न्यूट्रल एक्शंस है। नाउ व्हाट आर न्यूट्रल एक्शंस, न्यूट्रल एक्शंस मीन्स यू आर जस्ट रीपिंग द फ्रूट ऑफ योर गुड कर्म। जैसे अभी कई हमने बहुत मेहनत की, बहुत कमाया, बहुत कमा लिया, फिर रिटायरमेंट ले ली, तो अभी जो मैंने कमाया वो खा रहे हैं, इसमें क्या है, वो खा रहे हैं, तो उस समय कमा तो नहीं रहे हैं, केवल खा रहे हैं। तो न्यूट्रल एक्शंस मीन्स यू आर रीपिंग द फ्रूट ऑफ योर राइटियस एक्शंस। जैसे बीज बोना भी एक कर्म है, फल खाना भी एक कर्म है, कर्म तो है ना, फल खाया, पर उस कर्म रूपी फल को, जो फल रूपी जो कर्म था उसका बीज फिर बो लेते हैं, पर समझो वो बीज नहीं बोया, खा लिया, खत्म हो गया वो फल खाया। तो सतयुग त्रेता में फल केवल खा रहे हैं, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, ये आत्मा को सब सुख मिलता है। आज जो तन का रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, चाहे कितना भी धन कमा लो तो भी खींचातानी ही है, और वहां तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख, क्योंकि इस समय संगम युग पर श्रेष्ठ कर्मों का हमने बीज डाला, और तो वहां हम फल ही खाते रहते हैं। तो इसीलिए जैसे कल आपको बताया कि हम चक्र नीचे आते हैं, उसी को एक सीढ़ी का रूप भी देते हैं। सतयुग त्रेता हमारे जो कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं, जहां केवल फल ही खा रहे हैं, तीनों प्रकार का सुख पा रहे हैं, चारों प्रकार का सुख, चार प्रकार का सुख माना जाता है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख, जन माना संबंध। इस समय कलयुग में चारों प्रकार का दुख है और वहां चारों प्रकार का सुख है, और उसका क्या प्रूफ है कि वहां चारों प्रकार का सुख है, तन मन धन जन, वहां उसका प्रूफ कलयुग में भी हमें मिलता है कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं उनको इतना तन का सुख है, मूर्ति को भी, कि अखंड मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है। तो सोचो आप वो तन कितना निरोगी होगा उनका, उनके चेहरे से ही मन की शांति का अनुभव होने लगता है, ऐसे अनुभव होता है जैसे उनका दर्शन किया मन प्रसन्न हो गया। तो जब प्रैक्टिकल जीवन में होंगे वो, तो कितना मन का सुख होगा उनको, जो उनकी मूर्तियों से भी सुख मिलता है। धन का सुख इतना अकीचार, जो आज भी उनकी मूर्तियों को सोना पहनाते हैं, क्या नहीं देते हैं, कितने सच्चे हीरे जवाहरात के जेवर देते हैं मूर्तियों को, तो मूर्ति को इतना मिलता है। तो आप सोचो जब प्रैक्टिकल भी होंगे, धन की कमी होगी क्या, लक्ष्मी तो साक्षात धन की देवी है। तो जब हम ये बात सोचते हैं तो देखिए ये सब उनकी प्रारब्ध थी, जो उनकी मूर्तियों को भी ये प्रारब्ध मिल रही है इस समय, और जन इतना रिस्पेक्ट, जो भक्त उनके आगे साष्टांग नमस्कार करते हैं, और रिलेशनशिप्स कितने सुंदर, परिवार इतना श्रेष्ठ। अब उस रूप से हमें समझना है, लेकिन जैसे ही द्वापर आया, आत्मा ने जो सत्कर्मों का फल दो युग तक खाया, तो द्वापर से कर्म बदल गए, और वो कर्म क्या बन गए, पाप या पुण्य कर्म, अकर्म सत्कर्म सब खत्म, पाप और पुण्य केवल हम दो ही कर्म जानते हैं जो द्वापर युग से बनना शुरू हुए। कैसे मंदिर बनाना, हाँ, ये सारे प्याऊ खोलना या धर्मशालाएं बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये पुण्य कर्म माने जाते हैं और उन पुण्य कर्मों का थोड़ा सा फल मिलता है। कोई धर्मशाला खोलते हैं तो उनको अगले जन्म में बहुत बड़ी जमीन मिल जाएगी, क्योंकि धर्मशाला खोली है तो अभी उनके माँ बाप बहुत धनी होंगे, बहुत धर्मशाला होगी। धन का दान किया तो अगले जन्म में उसको गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। हॉस्पिटल में दान किया तो अगले जन्म में थोड़ा स्वास्थ्य मिलेगा। ये सब आजकल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, हॉस्पिटल्स चैरिटेबल है, क्योंकि धन दान करते हैं उसमें तो उनका रिटर्न उनको मिलता है जो दान करते हैं। क्यों नहीं मिलता है? लेकिन एक जन्म बस। और इस समय जो हम सत्कर्म करते हैं, तन मन धन संबंध संपर्क, इन सबसे जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं मन वचन कर्म सहित, वो इतना श्रेष्ठ बन जाता है फल जो दो युग तक हम खाते रहेंगे। इसलिए अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, अभी नहीं हमको फल खाना है, अभी तो देना है, दाता बन के देना है, भाव समान भगवान के समान देना है, ये भावना है। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, कहा जाता है जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो सहज मिले वो दूध के समान है, वो शक्ति देता है, सबकी दुआओं के साथ मिलता है। जो मांग लिया वो पानी बराबर, वो केवल आपकी प्यास बुझाएगा कि हाँ धन इकट्ठा हुआ, केवल प्यास बुझाएगा, वो सुख खुशी नहीं देगा। और जो खींच लिया वो रक्त बराबर, ये खून चूस लेना है जैसे उसका, ये हाँ ये भगवान का कहना है, जो वो रक्त बराबर, ये सतगुरु की वाणी है। इसीलिए ऐसा कोई कर्म न करो जो रक्त के समान किसी को चूस लेना, उसकी बद्दुआओं के साथ लेना। बद्दुआओं के साथ अगर कुछ भी कमाया वो कभी आपको सुख नहीं देगा, कभी नहीं सुख देगा, ये समझ लो, ये कर्म फिलॉसफी है। इसलिए परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि अब द्वापर कलयुग से जो हमने कर्म किए वो या तो पुण्य कर्म किए थोड़े बहुत, बाकी तो पापी किए, क्योंकि दे अभिमान के वश ही कर्म करते आए, काम क्रोध लोभ अहंकार के वश ही कर्म करते आए। और इस समय कलयुग अंत में पापों का बहुत बोझ है हमारे सिर पर, हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 के ऊपर भी किसने कल प्रश्न किया, 84 लाख योनियां तो दुनिया में है, उनसे भी ज्यादा होगी। कई कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां 84 लाख योनियों को नहीं मानती है कि आप जो कर्म करेंगे आपको उस योनि में फल मिलेगा, उस योनि में मिलेगा। हम कहते बिल्कुल नहीं, ये गॉड ने रिवील किया है कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा के अंदर मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं, तो वो संस्कार अनुसार वही चोला मिलेगा। तो कई कहते कि ये जो और योनियां हैं ये भोग योनि नहीं है, हम कहते ये भोग योनि नहीं है, ये तो प्रकृति के लिए एक शोभा है। कर्म फिलॉसफी इज मेनली फॉर ह्यूमन सोल्स, उनके लिए क्या कर्म फिलॉसफी हम देंगे ह्यूमन सोल्स? क्यों? क्योंकि हम जैसा करेंगे, बुद्धि हमें एक, ये भी एक लॉ है, उनकी वो बुद्धि नहीं है जैसे इंसान की बुद्धि है। और अगर बुद्धि नहीं है दे इट इज अगेंस्ट द लॉ टू गिव देम एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट इन दैट फॉर्म। जैसे आज इंसान भी मान लीजिए किसकी हत्या कर ली और फिर वो डिक्लेयर करता है कि इसका वकील ये इनसेन है, ये पागल है, तो पागल को जेल में थोड़ी रखेंगे, कहाँ रखेंगे हा? पागल को कहाँ रखेंगे? पागल खाने में, पागलों के अस्पताल में, नहीं वही रखेंगे ना, उनका इलाज करेंगे, इसमें कि जेल में रखेंगे। सजा खाना नहीं है उनके लिए क्योंकि पागल है, यदि एक इंसान के लिए की बात है। परंतु इसी प्रकार जानवर योनि ये बुद्धि क्या रूप नहीं है जो इंसान को ये सिक्स्थ सेंस दिया हुआ है। इसीलिए कोई कहते वो भोग योनि, हम कहते ये भोग योनि मत कहो, अगर वही भोग योनि तो इंसान की योनि में भोगना नहीं होनी चाहिए, भाई जितनी भोगना इंसान को है उतनी जानवरों को भी नहीं है, नहीं है। हम एक बार एक चुटकुला पढ़ रहे थे कहीं, जोक है कि दो जानवर आपस में बात कर रहे हैं। एक जानवर दूसरे को कहता है कि अरे मैंने सुना है कि आज का इंसान है ना जो जानवर जैसा बन गया है। तो दूसरा जानवर कहता है क्या उसकी प्रमोशन हो गई है। जानवर की प्रमोशन जाना, क्योंकि जानवर बनना ये प्रमोशन है। कैसे प्रमोशन है? तो कहा देखो हम जानवर कितना प्यार प्रेम से रहते हैं, हमारे अंदर न कोई धर्म भेद है, न भाषा भेद है, न रंग भेद है, न प्रांत भेद है, न देश भेद है, न जाति भेद है, कोई भेद नहीं है। अभी कितना भेद लगा पड़ा, हैदराबाद का किस्सा हुआ, अभी तक उसका चल ही रहा है। बेचारा वाइस चांसलर भी क्या करेगा, उसको तो निकाल ही दिया, हाँ जाओ लॉन्ग छुट्टी पर जाओ। अभी दो चार दिन पहले का वो दलित किया ने अपनी सुसाइड किया। अभी ये आपस ही इनके झगड़े होते हैं, आपस से ये जातिवाद जाति भेद इतना आज संसार भारत में है जो बात मत पूछिए। जानवरों में कम से कम ये तो नहीं है, तो दे आर बेटर ऑफ देन अस ना। और अगर कोई मनुष्य जितनी भोगना भोग रहा है और समझो ये जानवर योनि में जाए तो जानवरों की तो वृद्धि होनी चाहिए, इंसान घटने चाहिए, लेकिन आज इंसान इतने बढ़ रहे हैं और जानवर घट रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल्स। कितनी रक्षा करनी पड़ती है शेरों की और चीतों की, और इंसानों की तो कोई रक्षा की बात ही नहीं है, तो मर रहे हैं जैसे भेड़ बकरियां, या मूली और गाजर का सिर कैसे काटते ना, वैसे आज ये क्या दुनिया में हाल हो रहा है, इंसान की वैल्यू नहीं रही है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं मनुष्य योनि, यानी ये मानव का जन्म अति दुर्लभ जन्म है, इसलिए हमें अभी तीन चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी सत्कर्म करके हमको वापस जाना है। ये पाप की गठरी हम नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ, तो कैसे करेंगे हम पाप की गठरी को खत्म? पास्ट के जो 63 जन्म है उनको हमें खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? हमें और आगे कोई पाप कर्म नहीं करने हैं, पहले ये हम अपने आप को संभालें। कोई भी विकार के वशीभूत कर्म नहीं करना है, और साथ साथ भविष्य के लिए कमाई करनी है। 21 जन्मों के लिए सत्कर्मों द्वारा कमाई करनी है, और ये अगर हमने किया तो आत्मा पावन बन के वापस जाएगी, और अगर ये नहीं किया तो धर्मराजपुरी की सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ये समझ लो। और इस देर को समझ करके, अंधेर नहीं है ये जान करके अपने आप को बदलना होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि सजाएं खा करके हाथ खाली जाएं, या श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करके हम श्रेष्ठ फल प्राप्त करें? क्या चाहते हैं, पहला या दूसरा? क्या चाहते हैं? तो क्या करेंगे यहाँ से? तो हम कहते हैं यहाँ जो भी आते हैं ना, हम उनको कहते हैं, कहीं हमसे पूछते आपकी फीस क्या है, फीस लेते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। तैयार हो देने के लिए? कौन से खोटे पैसे? समझ गए सभी ना? तो इन 5 खोटे पैसों को हमें देना होगा, और उसके लिए फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड बिकम लाइक अ फ्लाइंग बर्ड, लेट गो करो, डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग, बिकॉज होल्ड ऑन किया वहीं फंस गए, ये भी समझ लो। और इसीलिए लेट गो एंड लेट गॉड, जो कुछ आपके ऊपर बोझ है ईश्वर को दे दो, सचमुच वो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा। और जैसे आपको बताया हम क्यों इस संसार में आए, एक एक्टर बन के आए, और एक्टर बन के एक्टिंग करनी है, यहाँ की चीजों से मोह नहीं रखना है। दूसरा, हम प्रेम सुख शांति बांटने के लिए आए हैं संसार में, अपने थॉट्स वर्ड्स एक्शंस के द्वारा। और तीसरा, उस ग्लोरी गॉड को ग्लोरीफाई करने आए हैं। बस ये तीन बातें बुद्धि में धारण करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही हमारी शुभ भावना शुभकामना आपके लिए है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो फिर से दो मिनट के लिए हम बैठेंगे साइलेंस में और यह प्रोग्राम समाप्त करेंगे।
करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो।